ओम शांति। आज हम सभी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर डायरेक्ट शिव बाबा से मिलन मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए है ही खास ये टर्न शिवरात्रि का समय। यज्ञ के इतिहास में 73 वर्ष हो गए। 73 वर्ष पहले शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अपना आकर के डायरेक्ट परिचय दिया। हिस्ट्री सुनते हैं बाबा की, बॉम्बे के बाबुलनाथ मंदिर उसके प्रांगण में कहो, गेस्ट हाउस में कहो, साकार बाबा उस समय वहां पर अपने 12वें गुरु जी के प्रवचन अथवा उनकी सेवा के निमित्त वहां पर थे। और उस समय बाबा को पहले पहले शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ। बाबा ने अपने गुरु जी को धन्यवाद देने के लिए बात की तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी कृपा से नहीं हुआ, ये उसी की कृपा है, शिव बाबा की डायरेक्ट कृपा है। वो शुरुआत थी और साकार बाबा की अगर सारी जीवन कहानी को हम देखते हैं एक अनोखी जीवन कहानी है। बचपन से लेकर के जब तक बाबा निमित्त बने नई शुरुआत करने के लिए, यज्ञ की स्थापना के लिए, बाबा का अपने हाथ का एक पत्र लिखा हुआ है 18 जनवरी 1937, लाल पेंसिल से ओम मंडली माता के चरणों में मैं अपना तन मन धन समर्पित करता हूं। और बाबा सिग्नेचर करते थे ओम। संसार में कई प्रकार के योग सिखाते हैं और बाबा ने सब प्रकार के योग का अभ्यास किया हुआ था, लेकिन ये जो नई शुरुआत हुई उसमें अधिकतर जो अभ्यास बाबा ने स्वयं किया और हम बच्चों को सिखाया, आवाज से परे जाने का, जिसको हम साइलेंस कहते हैं, क्योंकि आवाज जैसे ही कान में पड़ती है उसका रिएक्शन माइंड पे होता है। जो हम सुनते हैं उस अनुसार मन में चित्र बनना शुरू हो जाता है। लेकिन भगवानों वाच है, मैं जो हूं जैसा हूं, जो मेरे यथार्थ रूप को पहचान कर मेरे साथ योग युक्त होता है वो प्रयोग योगी मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। ये गीता के महावाक्य हैं और बाबा गीता का अध्ययन हर रोज करते थे। अपनी खुद की बाबा अनुभव की बातें जो सुनाते थे, तो गीता की एक छोटी सी कॉपी लॉकेट में जैसे एक डाल के रखते थे और एक अपने साथ हमेशा रखते थे, कहीं भी जाना और आना, गीता का अध्ययन करना, उसके बिना नाश्ता नहीं करना, भोजन नहीं करना, जब फुर्सत मिले गीता का अध्ययन करना। और उसमें वो महावाक्य आते हैं जिसको बाबा ने, जब शिव बाबा का परिचय मिला उसके बाद और अच्छी तरह से व्यक्तिगत अभ्यास, इतने तक जो पहले, जब से मैं खुद बाबा से मिला हूं, वो 10 साल का मेरे सामने सीन आते हैं। मुरली शुरू होने से पहले बाबा कुछ टाइम साइलेंस कराते थे तो 3 मिनट का गीत बजता था, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, भजन जैसे रिकॉर्डेड हैं। 1959 से जब से मैं बाबा के पास आया तो वो सुनते थे। 1965 से धीरे धीरे वो पूरा गीत सुनना बंद हो गया था। 1-2 लाइन बजती थी तो बाबा इशारा करता था, गीत चंद्रास दादा बंद कर देता था। इन दिनों में जो मुरली हम सुनते हैं, साकार मुरली जो चल रही है, आज तो अव्यक्त मुरली थी लेकिन साकार मुरली जो चल रही है अभी, वो 67-68 की हैं। उनमें शुरू में कोई गीत नहीं है, बहुत मुश्किल कभी कहीं बाबा ने बजवाए होंगे। कारण क्या था? तो जैसे बताया ना, बाबा की अपनी जीवन कहानी ही अद्भुत जीवन कहानी है और उसमें बाबा ने जो अभ्यास किया है वो भी अद्भुत है। उसमें अधिकतर बाबा ने साइलेंस का बहुत अभ्यास किया। तो हम बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चे फॉलो फादर, बाप को फॉलो करो। किस बात में फॉलो करें? ज्ञान के हिसाब से, ज्ञान समझ में आ गया उसको धारण करना है, धारणा की बातें समझ में आ गई उसको धारण करके चलना है। अभ्यास में क्या फॉलो करें? तो बाबा ने जिस तरह से बाहर की साइलेंस, मुख की साइलेंस और धीरे धीरे मन की भी साइलेंस, मन को पूरा यथार्थ रीति से मनमना भव किया, पूरी कंसेंट्रेशन शिव बाबा के स्वरूप के ऊपर और कहीं भी मन ना जाए। जब पूरी कंसेंट्रेशन शिव बाबा के स्वरूप पर हो तो शिव बाबा के सिवा दूसरा कोई संकल्प नहीं चलता फिर। और शिव बाबा सर्वशक्तिवान बाप है, उनसे शक्ति लेने का ये सहज साधन है। जितना मन के पटल पर शांति में रह करके अंदर ही अंदर शिव बाबा को देखते रहते हैं, उनके साथ मन लगा रहता है, तो संग का रंग लगता है। बड़ी सूक्ष्म बात है, शुरू में कुछ डिफिकल्ट भी लगती है, थोड़ी थोड़ी मुश्किल भी लगती है। क्यों? मन को बहुत सारी कई दूसरी बातों का खजाना मिलता है, तो कभी कोई बात सोच में चले जाते, कभी कोई बात, कभी कोई बात। लेकिन यह अभ्यास ऐसा है कि जिसमें वही गीता के शब्द आ जाते हैं, सब सर्वधर्मान परित्याज, बाकी सब देह के धर्मों का त्याग करो, देह की बातों का त्याग करो, देह की दुनिया का मन से त्याग करो और मन मेरे साथ लगाओ। है बड़ा सहज, बाबा ने नाम भी दिया इसको सहज राजयोग, पर अपने आप से हम पूछते हैं, आप भी साक्षी होके अपना चार्ट देखें कि जब पौना घंटा सुबह को योग में बैठे, आज की बात करता, घर में होते हैं, सेंटर पे होते हैं, वहां का वायुमंडल, और फिर मधुबन आ गए, शांतिवन में आ गए, यहां का वायुमंडल और कुछ यहां दूसरी बात नहीं है, तो भी आप अपना साक्षी होकर के अपने आप को, अपने चार्ट को देखें, पौने घंटे में आपको कितना समय लगता है कि और कोई आपके मन में संकल्प नहीं आया, आप और बाप, दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति कितना टाइम रही? क्योंकि जब ऐसी स्थिति रहे तो संग का रंग लगे, तब उसके रंग में रंगे जाते हैं, क्योंकि शिव बाबा सदा ही कहां रहते हैं, किस स्मृति में रहते हैं, साइलेंस में रहते हैं। जो उनका नाम है विश्व कल्याणकारी है, लेकिन धाम कौन सा है? शांति धाम, नाम ही है शांति धाम। और स्वधर्म क्या है? हम आत्माओं का भी वही स्वधर्म है, स्वधर्म का परिचय भी देते हैं एक दो को, ब्राह्मण सभी एक दो को किस शब्दों में ग्रीट करते हैं, एक दो को नमस्ते नहीं कहते हैं, राम राम नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? ओम शांति। बहुत अच्छा लगता है, ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप। पर प्रश्न उठता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं तो स्वरूप में कितना समय स्थिर और स्थित रहता? कभी अस्थिर होते हैं, कभी मन में अशांति तो नहीं आ जाती है? और खासकर जब अभ्यास करते हैं उस समय दूसरा कोई संकल्प तो नहीं आ जाते? अगर साक्षी होकर के अपना अपना चार्ट देखें, क्योंकि मैं कभी कभी रू रूहान में पूछ भी लेता हूं, कितना समय आपका मन लगा रहता है? बहुत अच्छे अच्छे भाई बहन है, लेकिन सच बोल देते हैं, कहते पौने घंटे में 5-7 मिनट अच्छी तरह टिक जाते हैं, बाकी टाइम भी क्या हुआ? बाकी टाइम थोड़ा दूसरे विचार चल गए। तो साइलेंस की शक्ति कैसे पैदा हो? मोटे रूप से बताऊं, जब कभी थकान होती, कुछ होता, तो क्या करते हैं? सो जाते हैं ना। अगर नींद अच्छी आई, गहरी आई, तो सुबह को उठेंगे तो कहेंगे भाई अब फ्रेश हो गए, क्या हुआ, ताकत वापस आ गई। तो इसी तरह से जब आत्मा अपने स्वधर्म में, शांत स्वधर्म में शांति की दुनिया और शांति के सागर बाप के संग में रहे तो संग का रंग लगे, तो शक्ति महसूस हो। सर्वशक्तिमान की शक्ति क्या है? उनकी शक्ति है, शक्ति से परिवर्तन होता है, बाप समान बन जाते हैं। जो पिछली मुरली बाबा की थी, उस समय बाबा ने खास एक बात कही। कौन सी बात? नो कंप्लेंट, याद है? फिर कोई कंप्लेंट नहीं रहती है। इतनी शक्ति आती है कि आत्मा के संस्कार बिल्कुल, जो ओरिजिनल संस्कार बाप समान है, वो प्रज्वलित होते हैं, वापस आ जाते हैं, वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं। और जो बीच के संस्कार हैं 63 जन्म के, वो भस्म हो जाते, मिट जाते हैं। आत्मा एकदम पावन स्वच्छ बन जाती, और उसकी फीलिंग क्या है? बहुत अंदर में लाइट फीलिंग आती है। एक ज्ञान के हिसाब से है कि हम आत्मा लाइट स्वरूप हैं, पिता भी लाइट स्वरूप है, पर उसके साथ में अंदर की फीलिंग बहुत है, नहीं तो सिर भारी रहेगा, हैवीनेस रहती है। पर आत्मा जितनी जितनी पावन बन रही है योग बल से, उतना लाइट भी सहज रीति से, बड़ा सरल रीति से निर्मल भाव आ जाता है। जो दादी जी के लिए लिखते हैं ना, उनके गुण निमित, निर्माण और निर्मल भाव, वो धारणा बड़ी सहज हो जाती है। और जो बीती बातें हैं वो सब, उनसे मन डिटैच हो जाता है। इस जीवन में भी कई ऐसी बातें, घटनाएं घटी होती हैं, वो जाती नहीं है मन से, लेकिन ये शांति की शक्ति, अशुभ मन में कुछ नहीं रहता, अशुद्ध मन में कुछ नहीं रहता। और बीती हुई बातें जो सुखद नहीं है, वो सब मिट जाती है। वो सिद्ध करती हैं आत्मा कितनी पावन बनी है। स्वप्न में भी अगर कोई बात आती है, इसका मतलब अभी तक पावन नहीं बनी है। दृष्टि अगर सहज रीति से पावन नहीं है, तो इसका मतलब अभी भी कुछ कमी है। ऐसा स्वाभाविक स्वरूप जो आत्मा का है, जिसको हम कहते हैं बाप समान स्वरूप, बाप समान अर्थात स्वाभाविक पवित्र स्वरूप, स्वाभाविक शांत स्वरूप, स्वाभाविक प्रेम स्वरूप और स्वाभाविक आनंद स्वरूप, ये सहज रीति हो, सरल रीति हो, हर समय निरंतर हो, क्योंकि हम आत्माओं का ये स्वधर्म है। जब तक अपने स्वधर्म में टिके नहीं, तो सच्चा सुख फील नहीं होता। आत्मा का स्वधर्म है क्या? क्या स्वधर्म है? शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। शक्ति स्वरूप सोचिए थोड़ा, सर्वशक्तिवान पिता की संतान आत्मा। बाबा तो कहता है मास्टर सर्वशक्तिवान हो, लेकिन वो नहीं तो कम से कम शक्ति स्वरूप तो हो। तो ये अनुभव होते हैं जब मन मना भव हो, और वो हो सकता है साइलेंस में। उसमें जो शक्ति उपार्जित होती है आत्मा में, उसका और कोई तरीका नहीं है। उसकी भक्ति मार्ग में यादगार रूप में 40-40 दिन का अभ्यास, खासकर कई हठ योगी ऐसा करते हैं, गर्मी के दिनों में मई के दिनों में, अप्रैल मई में चारों तरफ आग, लकड़ी को आग लगा के बीच में बैठ के तपस्या करते हैं। क्या मतलब है उसका? उससे तो और ही शरीर को कष्ट होता है, लेकिन नहीं, वो निशानी है ऐसी तपस्या की कि हमें और कोई अपने मन के इर्द गिर्द दूसरे संकल्प नहीं, सर्वशक्तिवान शिव बाप के संकल्प, उसी के दायरे में मन टिका हुआ है। मनमना भव, उसका भाव ही ये है, मन मेरे में लगाओ। तो वही मन के दर्पण में दिखता है, वही मन को फीड कर रहा है, और जैसी फीडिंग होती है उस अनुसार शक्ति अनुभव होती है, उसका स्वरूप बन जाते हैं। और उसका स्वरूप बन गए तब दिल को तसल्ली मिलती है, बस ये चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और उसमें आपके वाइब्रेशन जो हैं, जो आज की मुरली में वरदान में खास था, सारे विश्व की अशुद्धता को दूर करना, वाइब्रेशन को चेंज करना, मनुष्यात्मों के संकल्पों को भी परिवर्तन करना, इतनी शक्ति। अगर कोई आपको पुरानी बातें, पुराने संस्कार, कोई ऐसे डिफिकल्टीज आ रही हो, उससे मुक्त होने का एक सहज तरीका, शिवरात्रि के दिन खास क्या करते हैं, भक्त लोग क्या करते हैं, उपवास भी रखते हैं, स्नान भी करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। ब्राह्मण क्या करेंगे, सच्चे ब्राह्मण जो हैं वो क्या करेंगे? एक तो जो पुराना कुछ भी कचरा अपने मन में हो वो सारा लिख करके बाबा के, बाबा तो कहते थे गद्दी के नीचे रख देना, वहां पर एक तपस्या धाम में वो रखा हुआ है एक बॉक्स खास इसके लिए, पैसे डालने के लिए नहीं, अपनी कोई कमी कमजोरी है वो लिख करके उसमें डाल दो, बाबा को दान दे दो। बस दान का बड़ा महत्व है, दान दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती है, और इसलिए वो खास क्या कहते हैं पेटी रख दी है, क्योंकि पेटी में एक बार डाल दी फिर आप निकाल नहीं सकते उससे। लेकिन क्यों डालने की है ये सोच लो थोड़ा, डालनी इसलिए है कि अपने काम की नहीं है, वो आपके साथ रहती है तो आपको सुख नहीं मिलता, उससे दुख मिलता है। इसलिए पुरानी जो भी बात है वो बाबा को दे दीजिए, मुक्त हो जाइए, मुक्ति पाने का सहज तरीका है। और जीवन मुक्ति के लिए बाबा के साथ मन लगा लो, क्योंकि सर्वशक्तिवान का संग है आपके मन के द्वारा, तो आपको माया कभी भी हैरान नहीं कर सकती है, इतनी शक्ति आ जाती है। कैसा भी रूप लेकर के आए कुछ नहीं कर सकती है, नमस्कार करके चली जाएगी। तो इसलिए आज शिवरात्रि के दिन खास बाबा से कौन सा वरदान लेना है, बाबा सन्मुख आएंगे वरदान देंगे वो तो बाबा जानता है क्या देंगे, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे क्या वरदान चाहते हैं? जो बाबा चाहता है, बाबा यही चाहता है कि मेरे बच्चे अब पुराने हिसाब किताब, पुराने संस्कार, पुराने स्मृतियां, इन सब से मुक्त हो जाए। और पुरुषोत्तम संगम युग की कौन सी विशेष बात है, अपने शक्ति स्वरूप में स्थित हो करके अति इंद्रिय सुख में रहे, बस तब कहेंगे अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो ब्राह्मणों से पूछो। हाँ? सदा रहते हैं ऐसे अति इंद्रिय सुख में, रहना चाहिए। अभी नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे, कलप कलप की बात हो जाएगी फिर। बाबा उन दिनों में, साकार की बात फिर कर रहा हूं, वो चित्र श्री लक्ष्मी नारायण का जब बनाया ना, तो उसमें खास ये आपका 21 जन्म के लिए अधिकार है, वर्षा है, लेकिन साथ में ये भी कि अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। तो ये तो सभी बाबा के वारस बैठे हैं, नहीं तो बाबा से मिलने नहीं आएंगे। लेकिन वारस भी बाबा ने जैसे कहा ना, साकार मुरली में कल था, वारस तो बनते हैं लेकिन सतयुग आद से वर्षा ले, बाद में नहीं। त्रेता में आए नहीं, वो नहीं, आद से लेकर के। तो आद से आना अर्थात एकदम गोल्डन स्टेज प्राप्त करना, सतो प्रधान। तो हमारे संकल्प भी सतो प्रधान बन जाए, हो जाए, नैन भी ऐसे बाबा के साक्षात्कार कराने वाले बन जाए, और साथ में कर्मों में ऐसी श्रेष्ठता जो बाबा स्वयं हम बच्चों के कर्मों के गुणगान करे। बाबा भी तो कभी कभी कहते ना, मैं भी बच्चों की माला जपता हूं। किन बच्चों की माला जपते हैं? जो बाबा के दिल तख्त नशीन बनते हैं। किस आधार से? बाबा के आज्ञाकारी बच्चे बनते हैं, फरमा बरदार बच्चे बनते हैं। ये बाबा की लास्ट की मुरली के शब्द हैं, आज्ञाकारी। साकार मुरली की बात कर रहा हूं, आज्ञाकारी, वफादार, फरमा बरदार। तो बाबा का फरमान क्या है हम बच्चों को? एक ही फरमान है, बच्चे अभी और बातों को छोड़ो, निरंतर मुझे याद करो। तो निरंतर याद कब रहेगी? सहज, जब बाबा को अच्छी तरह से पहचान लिया, स्वीकार कर लिया और बाबा के बन गए। मन भटकाना नहीं है अभी, वो दिन पूरे हो गए। ना भटकना है ना भटकाना है, ना खुद को भटकाना है ना औरों को भटकाना है। सच्चाई की राह मिल गई, सच्चा बाप मिल गया, और उससे जो शक्ति मिली है, सर्वशक्तिवान की शक्ति से मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में रहकर सदा अति इंद्रिय सुख के अनुभव में रहना है। तो आज बाबा से मुलाकात करना माना खूब हृदय गदगद होना चाहिए। वाह बाबा, वाह हमारी तकदीर, अरे ऐसे सन्मुख मिलन हम बाबा से मनाए। भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढते ढूंढते बाबा कहते थे, मंदिरों में ठिकानों में इधर उधर जाके माथा टेकते टेकते ये घिस गया है सारा, भाइयों का देखने में ज्यादा आता है। लेकिन अभी बाबा ने भटकने से बचा दिया, ठोकरें खाने से बचा दिया, वेस्ट धन इतना इधर उधर खर्च किया, बहुत कुछ किया। बाबा कभी कभी हंसी में कहते थे, बच्चे मैंने इतना धन दिया वो कहां आपने गंवा दिया? तो बच्चे क्या कहते हैं, बाबा हमने आपके ही तो मंदिर बनाए उसमें लगा दिया। तो अभी फिर से हम बच्चे बाबा की याद की शक्ति से, साइलेंस के बल से मंदिर लायक बन रहे हैं, फिर से पुजारी से पूज्य बन रहे हैं। ये है शक्ति, साइलेंस की शक्ति के द्वारा साइलेंस की शक्ति माना योग की शक्ति। बाबा के साथ योग युक्त होने से पूज्य बन जाते हैं, सिमरणीय बन जाते हैं और डबल ताजधारी बनने के योग्य बन जाते हैं। तो ऐसी शक्ति भरने के लिए खास मधुबन आए हैं। तो अच्छी तरह से आज का दिन सिर्फ नहीं, ये तो एक दिन बीच में आया है, पर आज का दिन है विशेष, हर तरह से विशेष है। एक तो साइलेंस के द्वारा अपने आप को इतने स्थिति पर लाना, और दूसरा है कि जब बाबा सन्मुख आते हैं मिलने के लिए, उस समय अगर आप योग युक्त होंगे, साइलेंस में होंगे, जितनी उस समय आपको अनुभूति होगी वो एक अमिट छाप लग जाती है कि मधुबन में आए और बाबा से मिले, बाबा से जो चाहिए था वो प्राप्ति की। ऐसा लगेगा बाबा मेरे लिए ही आए हैं, मेरे साथ ही बात कर रहे हैं। भले यहां पर 18,000 भाई बहन होंगे, आज 15,000 तो बाहर से आए हैं, 3,000 यहां के हो जाते हैं, शांतिवन, ज्ञान सरोवर, मधुबन, ग्लोबल हॉस्पिटल, 18,000 है। आज शाम को देखना सारा हाल लास्ट तक भरा होगा, लेकिन भरा हुआ किससे होगा? अपने भाई बहनों से, कोई पराया नहीं है। तो शिव बाबा के साथ शालिग्राम पूजे जाते हैं ना, खास जम्मू में मंदिर है ऐसा, शिव बाबा के साथ में वहां 16,108 शालिग्राम पूजे जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि कम से कम यहां जो आए हुए हैं वो तो उस मंदिर में जरूर पूजे जाएंगे, ऐसी मेरी शुभ भावना है। तो अभी हम सभी फिर कुछ मिनट के लिए अपने उस स्वरूप में स्थित हो जाएं, बाबा के संग के रंग में रंग जाएं, बाबा के समान शक्तिशाली स्थिति के अनुभव में चले जाएं, और बिल्कुल जिसको निर्विकल्प समाधि कहा जाता है उसका स्वरूप बन जाए। कोई विकल्प नहीं, केवल एक संकल्प, मैं और आप, दूसरा ना कोई। मन के तीसरे नेत्र से बाबा को सामने ज्योति स्वरूप में देखो, स्वयं को भी ज्योति स्वरूप में बाबा के संग में देखो और लाइट हो जाओ, एकदम लाइट, लाइट की दुनिया में विराजमान हो जाओ।
शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। Good.